आज के मुख्य समाचार। न्यू साउथ वेल्स में भारी बारिश जारी रहने पर नेचुरल डिजास्टर डिक्लेरेशन और कॉमनवेल्थ से जल्द ही होगी मदद की घोषणा। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी की कीव की पहली यात्रा के बाद यूक्रेन के लिए अधिक सैन्य सहायता और रूस पर होंगे अधिक प्रतिबंध। और खेल में ऑस्ट्रेलियाई निक किरियोस को विंबलडन में अपने चौथे दौर के खेल से पहले सामना करना पड़ा एक टेनिस चैंपियन की आलोचना से। और अब समाचार विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स स्टेट इमरजेंसी ने चेतावनी दी है कि व्यापक बाढ़ की वजह से जगह जगह निकासी के आदेश के साथ आज शाम को और भारी बारिश होने की संभावना है। नेपियर नदी और हॉक्सबरी नदी दोनों ही बाढ़ का खतरा पैदा कर रहे हैं और आपात स्थिति के दौरान कर्मचारियों के पास मदद के लिए लगभग 4,000 लोगों ने अनुरोध किए हैं। 80 से अधिक बाढ़ बचाव कार्य हुए हैं और अधिकारी मोटर चालकों से गीली सड़कों से वाहन ना चलाने का आग्रह कर रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में पानी कम हो रहा है। SES आयुक्त कार्लिन यॉर्क ने ABC को बताया है कि अन्य क्षेत्रों में अभी तक विंडसर और वाइजमन फेरी जैसे बाढ़ का अनुभव नहीं हुआ है, जो बाद में सोमवार को होने की संभावना है।
People can find themselves isolated and therefore need our assistance to get them to safety. So really important they don't rush out at the moment. Keep home, stay off the roads and just, you know, be aware of the warnings and the information that we put out for them and it's designed to make
फेडरल आपातकालीन प्रबंधन मंत्री ने ग्रेटर सिडनी में बारिश से तबाह समुदायों को चेतावनी दी है कि वे पिछले 18 महीने में सबसे भीषण बाढ़ से निपटने के लिए तैयार रहें। सीनेटर मरे वॉट का कहना है कि फेडरल सरकार ने अधिक रक्षा बल का समर्थन किया है और प्राधिकारी वर्ग ने माता पिताओं से स्कूल की छुट्टी में यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। स्टेफ कुक, जो न्यू साउथ वेल्स की आपातकालीन सेवाएं और रेजिलियंस मंत्री और बाढ़ सहायता मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मदद के लिए एक राष्ट्रमंडल घोषणा मंगलवार यानी 5 जुलाई को की जाएगी।
For many communities, this is the fourth flood that they have seen in less than 18 months. And some of those images are truly heartbreaking, seeing people's homes, their lives turned upside down again, and their livelihoods very much impacted. I want to reassure those communities that we will be there with them right through the recovery process, and we do expect those natural disaster declarations to flow through either later today or early tomorrow morning.
सुश्री कुक ने ये भी कहा कि कैनली वेल, कासी हिल, गॉस्फोर्ड, नॉर्थ रिचमंड और रिचमंड में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में 7 निकासी केंद्र स्थापित किए गए हैं। सिडनी के दक्षिण में रॉयल नेशनल पार्क के पूर्व में पानी में एक मालवाहक जहाज ने बिजली खो दी है। उस जहाज पर फंसे 21 लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं। हेलीकॉप्टर और पुलिस की नौकाएं मिलकर काम कर रही हैं क्योंकि गंभीर मौसम की स्थिति बचाव के प्रयास को कठिन बना रही है। न्यू साउथ वेल्स के अधिकारियों का कहना है कि ये कार्य नाजुक और समय के प्रति संवेदनशील है क्योंकि नाव के 2 एंकर होने के बावजूद चट्टानों की ओर वो जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पहले ट्रुथ टेलिंग आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट देने के लिए 2 साल के विस्तार का अनुरोध किया है क्योंकि इनका लक्ष्य स्वदेशी लोगों के खिलाफ आधुनिक अन्याय पर ध्यान केंद्रित करना है। नई डॉग सप्ताह को चिन्हित करने के लिए विक्टोरिया के यूरुक न्याय आयोग ने सोमवार को राज्य भर में 174 स्थानीय बुजुर्गों और मेलबर्न स्थित जन सुनवाई में 7 अन्य लोगों के साथ बैठक के बाद अपनी अंतरिम रिपोर्ट जारी की, जबकि बहुत जल्द मुद्दों पर निष्कर्ष और सिफारिशें करने के लिए तहकीकात समिति ने विक्टोरियन गवर्नर लिंडा डिसो को अपनी अंतिम रिपोर्ट के लिए तारीख को 2024 के मध्य से 2026 के मध्य तक बढ़ाने और अतिरिक्त संसाधनों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा है। मेलबर्न के वेस्ट गेट ब्रिज पर विक्टोरिया के राज्य ध्वज की जगह पर एबोरिजिनल झंडा स्थायी रूप से लहराएगा। ध्वज को नई डॉक और रिकंसिलिएशन सप्ताह के लिए प्रदर्शित किया गया है और ये पुल पर बना रहेगा। विक्टोरियन सरकार का कहना है कि वेस्ट गेट ब्रिज सबसे दर्शनीय स्थलों में से एक है और अब यह झंडा शहर में गर्व से प्रदर्शित किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी का स्नेह से स्वागत किया है। यह पहली बार है जब किसी ऑस्ट्रेलियाई नेता ने उनके देश की राजधानी का दौरा किया है। रूस ने पूर्वी लुहांस्क क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया है, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने संघर्ष में खोए हुए क्षेत्र को फिर से हासिल करने की कसम खाई है। युद्ध क्षेत्र लक्ष्य अब पड़ोसी डोनेट्स्क क्षेत्र में बदल गया है और यूक्रेन से पता चला है कि रूस डॉनबास में गोलाबारी शुरू कर रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अल्बनीजी की यात्रा अधिक शांतपूर्ण समय के दौरान हो, लेकिन उन्होंने उच्च स्तरीय समर्थन के लिए ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद दिया। इमिग्रेशन पर फेडरल विपक्ष प्रवक्ता डैन टीहन ने घरेलू आपात स्थिति के दौरान विदेशों में बहुत समय बिताने के लिए प्रधानमंत्री अल्बनीजी की आलोचना की है। स्काई न्यूज से बात करते हुए टीहन कहते हैं कि प्रधानमंत्री अल्बनीजी की प्राथमिकताएं गलत क्रम में हैं।
Good prime ministers can do both. They understand that ultimately the domestic front is the most important place, and that is where you have to have the majority of your focus. And we're starting to see serious drift when it comes to incredibly important domestic issues like energy, like skill shortages, like these floods that we're now confronting on the eastern seaboard.
डेनमार्क में एक शॉपिंग सेंटर में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए। कोपेनहेगन में रविवार को हुए हमले में पुलिस ने 22 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उस पर हत्या का आरोप लगाया है। मुख्य पुलिस निरीक्षक सॉरेन थॉमसन ने बताया कि पीड़ितों में से एक की उम्र 40 वर्ष है, जबकि मरने वाले 2 अन्य युवा हैं। उन्होंने कहा कि 3 लोगों की हालत गंभीर है और पुलिस इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि हमला एक आतंकवादी कृत्य था।
In connection with the arrest of our suspect, who we are convinced is the perpetrator, he was in possession of a rifle and he was in possession of ammunition for the rifle. The arrest was undramatic in connection with him being apprehended.
डेनमार्क ने हाल ही में टूर डे फ्रांस के पहले 3 चरणों की मेजबानी की है, जबकि पॉप स्टार हैरी स्टाइल्स ने शोक व्यक्त करते हुए अपने कोपेनहेगन संगीत कार्यक्रम को रद्द कर दिया। और अब खबरें भारत से। भारत में पिछले 24 घंटों में 16,103 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। आधे से अधिक नए मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों से हैं। इस अवधि में कोविड-19 से 31 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब जानेंगे डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 68 सेंट्स है और भारत में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53.90 रुपये हो गई है। अब समाचार खेल जगत से। टेनिस के दिग्गज पैट कैश विंबलडन में अपनी विवादास्पद ऑन कोर्ट हरकतों के बाद खेल को नीचे लाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी निक किरियोस की आलोचना कर रहे हैं। सप्ताहांत में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से हारने के बाद ग्रीक खिलाड़ी स्टेफानोस तित्सिपास ने किरियोस को धमकाने के बाद 27 वर्षीय कैश पर धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। मैच के बारे में टिप्पणी देते वक्त कैश ने इसे आक्रामक व्यवहार कहकर निंदा की। उन्होंने कहा कि कोर्ट पर हुई सर्कस ने हद बढ़ा दी है और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। किरियोस अपने चौथे दौर में अमेरिका के ब्रैंडन नकाशिमा के खिलाफ खेलेंगे। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने बुडापेस्ट में 19वीं फिना विश्व चैंपियनशिप की अंतिम रात में 19 पदकों की दौड़ में 1 कांस्य पदक जीता है। मेडिसिन किनी और एनाबेल स्मिथ ने रविवार रात महिलाओं के 3 मीटर सिंक्रोनाइज स्प्रिंगबोर्ड फाइनल में कांस्य पदक हासिल किया। अब ध्यान इस महीने के अंत में बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों पर है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में बारिश की संभावना है और वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री रहेगा। एडिलेड में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहेगा। मेलबर्न में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 6 और अधिकतम तापमान 15 डिग्री रहेगा। कैनबेरा में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 1 और अधिकतम तापमान 13 डिग्री रहेगा। सिडनी में बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहेगा। ब्रिस्बेन में एक या दो बौछार की संभावना है और वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री रहेगा। डार्विन में धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान रहेगा 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।